शांति। December 1989। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है, मनसा में, वाचा में, कर्म में क्या नवीनता लाई है और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो, नवीनता अर्थात विशेषता। सब बातों में विशेषता लाई, मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन में हर समय हर आत्माओं सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभव ही हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इसी सेवा में आगे बढ़ रहे, बिजी रहने का तरीका आ गया। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। तो मुरली है 31 December 1989 की। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने 2 वर्ष पहले 87 में नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वह डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो, नवीनता अर्थात विशेषता। सब बातों में विशेषता ही, मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को भी क्या अनुभव हो, अर्थात मन में हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को क्या समझते हो, खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा का बहुत अच्छा प्लान बनाते हो, या कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल इंटरनेशनल वर्गीकरण, तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे एक दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें क्या है, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने 2 वर्ष पहले होमवर्क दिया था, क्या नवीनता लानी है, इसके डायरेक्शंस दिए थे। और आज देख रहे हैं कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है, किन बातों में नवीनता, मनसा में, वाचा में, कर्म में और सेवा संपर्क में नवीनता। उसमें भी आज बाबा किसके लिए कह रहे हैं नवीनता, मनसा में नवीनता, सेवा में नवीनता है, वाचा की सेवा में, कर्म में, सेवा संपर्क में। वैसी ही नवीनता किसमें लानी है, माइंड, क्रिएटिव थिंकिंग, विचार जो है वो नवीन। तो सबसे पहले तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें नवीनता लानी है। नवीनता अर्थात विशेषता, नवीनता अर्थात न्यूनेस। सबसे नवीनता की चार परिभाषाएं हैं, पांचवी आज यहाँ बाबा ने दी। पांचवी जो दी वो है विशेषता, परंतु नवीनता अर्थात न्यूनेस, नया कुछ, पहले जो नहीं किया कभी वो न्यूनेस। कुछ भी हो सकता है वो, परंतु पहले जो किया नहीं गया वो नवीनता। एक दूसरा नवीनता अर्थात वो आ गया न्यू में। नवीनता अर्थात चार डेफिनेशन, चार शब्द। पहला शब्द है न्यूनेस, सेकंड वर्ड वो पांचवा क्रिएटिविटी, सेकंड वर्ड इज रचनात्मकता, सृजनात्मकता। जब तक सृजनात्मकता नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, डायनामिक क्रिएटिविटी, तब तक जीवन में उमंग नहीं आता है। वही सुनते रहो, वही देखते रहो, वही सोचते रहो, वही करते रहो। नवी क्रिएटिविटी चाहिए उसमें कुछ। और क्रिएटिविटी का अर्थ केवल ये भी नहीं है कि जो आज तक किसी ने किया नहीं वो करना। ये एक छोटी सी परिभाषा है क्रिएटिविटी की, जो कि मानी जाती है क्रिएटिविटी अर्थात जो किसने किया नहीं है वो करना, परंतु ये केवल उसकी परिभाषा नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब गहरी परिभाषा अगर देखी जाए, क्रिएटिविटी अर्थात कर्म तो कर रहे बट विथ मोर लव, बट विथ मोर हार्ट, बट विथ मोर एंथुजियाज्म। वही कर्म है परंतु अतिरिक्त प्रेम, अतिरिक्त उमंग, अतिरिक्त उत्साह के साथ किया हुआ वही कर्म भी क्रिएटिविटी की श्रेणी में आता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है न्यूनेस, सेकंड डेफिनेशन है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता करना है। वो रचनात्मकता किस तल पर लानी है? बाबा कह रहे विचारों के तल पर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कुछ तो नया सोचना, वही पैटर्न पर चलने की मन को आदत है, नया लाना उसमें। तो सेकंड परिभाषा ये। थर्ड परिभाषा ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिव नवीनता अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, चेंज। ये तीसरी परिभाषा है नवीनता की, कि ट्रांसफॉर्म करना चीजों को, बदलना चीजों को, चेंज करना चीजों को। यहां चीज अर्थात सोचना। और चौथा नवीनता, चौथा अर्थात पुराना जो है उसका त्याग कहो, उसको उसके प्रति वैराग कहो, या उसको छोड़ना कहो। ये अपने आप में अलग प्रक्रिया है, पुराने को छोड़ना। तो जब भी नवीनता शब्द कहा जाएगा, यह हम अपने मन में लाएं, तो इन चार बातों को लाना है। सबसे पहली तो न्यूनेस, दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, और चौथा फिनिशिंग ओल्ड। जो कुछ पुराना है उसको समाप्त करना। और पांचवा जो इस मुरली में बाबा कह रहे हैं वो है विशेषता, हर चीज में विशेषता लाना। परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे पुराना बहुत प्रिय है। मनुष्य का स्वभाव है कि पुराना वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो दिनचर्या है, चाहे वो सोच है, चाहे वो बोल है, चाहे वो संस्कार है, चाहे वो आदतें है, चाहे वो नोट हो। उसका पुरानों के प्रति, पुराने के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव है। इतना लगाव है कि पुराना जर्जर हो चुका है, पुराना क्षीण हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, परंतु पुराने के प्रति प्यार ऐसा अगाध है, दुख भी दे रहा है परंतु छोड़ना नहीं चाहता। जैसे विदेश में घर पुराने होते छोड़ने नहीं चाहते, वही बात कह रहे थे बहुत बहुत सालों पहले विदेश के किसी एक शहर में एक चर्च था। वो जो चर्च था डिलैपिडेटेड, इतना जर्जर हो चुका था, इतना पुराना हो चुका था कि अब गिरा तब गिरा, परंतु जो चर्च के पादरी थे, जो बिशप्स थे, आर्च बिशप्स थे, वहां के जो चर्च के ट्रस्टी थे, चर्च की संभाल करने वाले जो व्यक्ति थे, वो नहीं चाहते थे कि ये चर्च तोड़ा जाए और नया बनाया जाए। परंतु उन्होंने जो आर्किटेक्ट होते उनको कंसल्ट किया, जो उसमें एक्सपर्टीज जिनको है, जो उसमें एक्सपर्ट है चर्च के विषय में, उनको उनसे राय ली, तो सभी ने एक बात कही कि सबसे पहले तो मीटिंग होनी चाहिए एक, कि चर्च का क्या किया जाए। तो उस मीटिंग में चार प्रस्ताव पारित हुए और सबकी सहमति से वो चारों ही प्रस्ताव पारित हुए। पहला प्रस्ताव था कि चर्च बहुत पुराना हो चुका है, चर्च एकदम जर्जर हो चुका है, नया चर्च बनना चाहिए या फिर पुराने को तोड़ना चाहिए और नया बनना चाहिए। तो ये सभी की सहमति से ये प्रस्ताव पारित हो गया एक, यहां कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रस्ताव था कि पुरानी जो जगह है जहां पर अभी जो चर्च खड़ा है वहीं पर दूसरा चर्च बनना चाहिए, यह भी पारित हुआ सभी की सहमति से, अनानी मस्ती, सभी ने कहा ठीक है, यहां तक भी ठीक है। तीसरा प्रस्ताव यह था जो पुराने चर्च की सामग्री है उससे ही नया चर्च बनना चाहिए, यहां तक भी बातें ठीक है, जीर्णोद्धार होना है वो तो करना ही है, जीर्णोद्धार के सिवा होगा ही नहीं, परंतु जो पुराने की सामग्री है, क्योंकि पुराने से प्यार इतना है, एक एक ईंट से प्यार है, एक एक ईंट में जैसे वाइब्रेशन से प्रार्थना के किए हुए, तो प्यार बहुत ज्यादा है उनका। तो तीसरा प्रस्ताव था कि जो पुराने चर्च की सामग्री है उसी से नया चर्च बनना चाहिए, यहां तक भी ठीक था। परंतु चौथा प्रस्ताव ऐसा पारित हुआ कि वो भी सभी की सहमति से पारित हुआ। वो ऐसा था, क्या होगा? जब तक नया नहीं बनेगा दू पुराना नहीं तोड़ेंगे। पहला प्रस्ताव, दूसरा वही था ना, दूसरा क्या था, उसी स्थान पर बनना चाहिए, तीसरा था उसी वस्तुओं से बनना चाहिए, उसी सामग्री से, और पहला था बनना चाहिए, परंतु चौथा प्रस्ताव ऐसा था कि जब तक नया नहीं बनता पुराने को नहीं तोड़ेंगे। तो यह असंभव कार्य हो गया। मनुष्य के मन की स्थिति भी ऐसी ही है कि पुराने विचार, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें बहुत दुख दे रही है, परंतु वो चाहता है कि नया बने, नया आए, नवीनता आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंज आए, क्रिएटिविटी हो, न्यूनेस हो, ओल्ड खत्म हो जाए, पारित। दूसरा, मनुष्य सोचता है कि प्यार उतना है कि उसी सामग्री से बननी चाहिए, नहीं। तीसरा ये सोचता है कि उसी जगह पर बननी चाहिए, जगह भी नहीं बदलना चाहता है मन की। और चौथा, जो इस कार्य को ही असंभव कर देता है, परंतु वो भी पारित हो जाता है। पुराने से इतना प्यार है, पुराने से इतना लगाव है, इसके लिए बाबा मुरलियों में हमेशा कौन सा उदाहरण देते, घर का उदाहरण देते, मकान का उदाहरण देते। बाप तुम्हारे लिए नया मकान बना रहा है, जब नया मकान बनता है तो कल भी कहा था ना, प्राप्ति भारी है इसका टेम्पटेशन, कल की मुरली में एक शब्द था, यहां तुम्हें टेम्पटेशन दी जाती है भारी प्राप्ति का। तो नया चाहिए, तभी पुराने के प्रति वैराग्य आता है, और वो उसी स्थान पर भी चाहिए। ये एक मनुष्य का दूसरा स्वभाव है, परंतु पुराने को मिटना होगा, समाप्त होना पड़ेगा, तभी नया बनेगा। सूफियों में कहते हैं ना, तुम्हें मरना होगा तभी तुम इस जीवन में अमर होगे, तुम्हें मरना होगा तभी तुम इस जीवन में अमर बनोगे, ऐसा वो लोग कहते हैं। अपने को छोड़ना पड़ेगा। क्राइस्ट ने कभी कहा है बाइबल में कि जो स्वयं को चिपके रहेगा वो खो देगा, और जो खो देगा वो पाएगा। कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो स्वयं को पकड़े रहेगा वही पुराने को वो खो देगा, परंतु जो खोएगा वो पाएगा। अलग संदर्भ में कहा है। तो क्या करना है? नवीनता लानी है। नवीनता के जो चार या पांच सिद्धांत है वो सारे ही आने चाहिए फिर नवीनता में। यहां नवीनता जो कही जा रही है वो बहुत ही सूक्ष्म नवीनता है, ये वैचारिक नवीनता है। जीवन गतिमान है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है, बह रहा है। यदि हम रुक जाए और पुराने को पकड़े रहे तो उसकी जो ये गत्यात्मक स्थिति है, ये जो गतिमान होना है, ये जो डायनामिज्म है, ये खो जाएगा, ये हम खो जाएंगे। जीवन तो बहता रहेगा, प्रवाह चालू रहेगा, तो हमें नवीनता लानी है। कहां कहां नवीनता लाए? पहला प्रश्न तो ये है, भवन यहां चार बातें बताई, परंतु हमें कहां लानी है, किन आदतों में नवीनता लानी है? गंदी आदत है, मुरलियों में दो दिन से बाबा कह रहे हैं, कल भी और आज भी। आदतें, वो आदतें दुख दे रही है, परंतु हम फिर भी उनको छोड़ नहीं रहे। जैसे कि बस उतना ही है हमारे पास दायरा, उसके बाहर हम जाना नहीं चाहते। वो छोड़ते तो दूसरी वहीं की पास की पकड़ते, उसको छोड़ते तो उसी की पास की कोई दूसरी पकड़ते, परंतु वो उससे बाहर नहीं निकलते, उस वर्तुल से वहीं घूमते रहते गोल गोल। और वो सारी आदतें कहीं ना कहीं देह भान से संबंधित है, देह अभिमान से संबंधित है। इसके लिए इनसे बाहर निकलना, परंतु मन में संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे अब तक का जो जीवन है उसमें न्यूनेस लानी है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, क्रिएटिविटी लानी है, और पुराना जो भी है टू नॉक ऑफ द ओल्ड, ठोकर मार देनी है पुराने को, टू किक ऑफ द ओल्ड, जो जो ओल्ड है, जिस जिसका हमने चुनाव कर रखा है, और जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है, पर हमने ही चुना है, हमने ही पकड़ा है, क्योंकि देहभान के क्षेत्र में जो कुछ भी चुनोगे वो सब दुख देने वाला है। नरक में जो भी चुना जाएगा सभी नारकीय है। जैसे एक व्यक्ति मरता है, पापी होगा, बहुत नरक के द्वार पर पहुंचता है, शैतान उससे मिलता है और कहता है कि हम थोड़े लोकतांत्रिक है, यहां पर हमारे पास थोड़ा चुनाव है, और अभी नरक में ज्यादा भीड़ भी नहीं है, इसके लिए यहां तानाशाही नहीं है, तुम चाहो उस प्रकार का नरक चुन सकते हो, अलग अलग समूह है यहां नरक के, इसमें से जो नरक चाहो वो चुन सकते हो। तो उसको सबसे पहले एक नरक का सीन दिखाया जाता है, एक दृश्य कि जिसमें दिखाया जाता है कि लोगों को त्रिशूल से चीर दिया जा रहा है, त्रिशूल है बहुत ही दर्दनाक। वो कहता है बस ये नहीं, दूसरा बताओ, एनी ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प होगा तो दूसरा दृश्य दिखाया जाता है जहां पर एक यातना यंत्र होता है, ऐसा टॉर्चर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कि जिसके ऊपर वो उसको लिटाया जाता है, व्यक्तियों को बहुत सारे हो रहे थे, और उसको लोगों को खींचा जाता है। वो कहता है ये भी मैं देख नहीं सकता, कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ। फिर उसको दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन के पास लेके जाते हैं। वहां पे देखते हैं एक लोगों का समूह है और बहुत ही गर्त जिसको कहते हैं, दुर्गंध से भरा हुआ गर्त, और उनको पशु पक्षी सब नोच रहे ऊपर ऊपर से। तो वो कहते हैं ये भी नहीं, कोई दूसरा और होगा तो बताओ। वो कहते हैं और एक है अंतिम, देख लो। तो वहां दिखाया है एक कमरा है जिसमें कई सारे लोग हैं परंतु कमर तक है और दुर्गंध से भरा हुआ है, और वो जो गर्त है कीचड़ा या गंदगी है वहां पर, परंतु केवल गर्दन तक है, गर्दन या कमर तक। और वो जो लोग वहां पे है नरक में वो सब चाय पी रहे हैं अच्छे से। वो कहता ये थोड़ा ठीक है कम से कम चाय है और गर्दन से खाली कमर तक है, बाकी तो ठीक है। तो वो कहता ये मुझे दे दो। तो वो वहां जाता है, उसको वो ऑप्शन दिया जाता है, वो जाता है और वो भी चाय पीने लगता है। फिर सीटी बजती है, सीटी बजती है कि चाय पीने का टाइम पूरा हुआ, अब चलो सब सिर के बल हो जाओ अपसाइड डाउन शीर्षासन यहां पर जो भी चुनाव करते हैं, नरक के चुनाव सभी नरकीय है। पुराने में जो भी चुनाव किया जाएगा सभी पुराना है, इसके लिए नया नव, चाहे कैसा भी नव आगंतुक हो परंतु वो विजिटर, तो वो इसी तरह से मन घूमता रहता है पुराने के आसपास। तो हम बात कर रहे थे नवीनता, नवीनता को कैसे लाए, और वो भी वैचारिक नवीनता जिसमें हम कहेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। हर एक को अपने विचारों में नवीनता लानी है। विचार बदलो तो सब बदल जाता है, विचार बदलो वाणी बदलेगी, कर्म बदलेंगे, सब कुछ बदलता है। केवल सोच, थॉट्स, थिंकिंग, और यहां बाबा थिंकिंग कौन सी कह रहे हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि हर एक के प्रति, उसमें कितनी सारी श्रेणियां आ जाएगी, जो हमें दुख देते हैं, जो हमारे जो हमारा विरोध करते हैं, उपहास करते हैं, निंदा करते हैं, सहयोग नहीं देते, हमारे आसपास है विरोध करते हैं, लानी करते हैं, अपमान करते हैं, वो सब 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 हमारे आसपास जो भी है, जो भी मनुष्य समुदाय संप्रदाय आसपास जो भी आत्माएं हैं, सभी के प्रति शुभ भावना रखो। बाबा कह रहे शुभ भावनाओं में इतनी शक्ति है, चाहे कितना ही विरोधी है अभी ज्ञान का विरोधी, परंतु उसके प्रति भी शुभ भावना है। महात्मा बुद्ध के जीवन में अपनी शुभ भावना को कभी कम नहीं करने दिया। चचेरा भाई उसका देवदत्त, बचपन से लेकर तो अंत तक उसको छोड़ा नहीं उसने। बचपन में भी तंग किया, जब वो उसने बौद्ध संघ निर्माण किया तो उसके भाई ने दूसरा संघ निर्माण किया, वो भी भिक्षु हुआ। इधर इसका संघ बढ़ता गया, उधर उसका भी संघ बढ़ता गया, उसने भी बढ़ाया, हर एक चीज किया। बुद्ध को मारने की भी कोशिश की कितनी बार, परंतु दिखाया है कि कभी शुभ भावनाओं को उसके प्रति कम ही नहीं होने दिया। कितना स्टॉक चाहिए, स्टॉक यहां तो बहुत है अमृत वेला, पर दिनचर्या में कहां खो जाता है समझ में नहीं आता है। कोई भी आत्मा सामने आ जाए, कैसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा, कैसे भी विचार वाली आत्मा, उसके प्रति शुभ भावना कि इसका कल्याण हो जाए, हो जाए। अभी परवश है, अभी अज्ञानी है, अभी अंडर इन्फ्लुएंस है, अभी नहीं जानती कितनी बड़ी साधना है ये, शुभ भावना की साधना, शुभ भावना की साधना अपने आप में एक साधना है। एकांत में हम अगर बैठे और देखे हमारे आसपास कौन लोग हैं, जो भी है, घर में, परिवार में, डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, सेंटर में, मधुबन में, सब जगह, जो भी है, जो हमें समझते नहीं है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है, जो हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिनसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है, एट वॉर, कुछ दिन पहले मुरली में इंग्लिश शब्द था, एट वॉर विथ, वैसे माया तो नहीं व्यक्ति, हमेशा ही मन में संघर्ष, दोनों तरफ संघर्ष है, एक संसारी आत्माएं भी संघर्षरत है तो आध्यात्मिक जीवन वाला भी संघर्षरत है। संसारी व्यक्ति जो है वो बाहर के व्यक्तियों से ज्यादा संघर्ष करते हैं, जो अध्यात्म है वो अंदर ही अंदर संघर्ष करते रहता है, परंतु संघर्ष दोनों इधर बरकरार है। अध्यात्म वास्तविकता अर्थात संघर्ष से मुक्ति, संघर्ष नहीं, संघर्ष को गिरा दो, ड्रॉप कर दो, ये जो संघर्ष है स्वतः ही हम, परंतु डर है हम डूब गए तो, डूबोगे नहीं, वो हमें उठा देगा। ये जो आंतरिक संघर्ष है बहुत ही सूक्ष्म संघर्ष चालू रहता है और अहंकार को पोषित करता है। प्रश्न हम पूछते हैं निरंकारी कैसे बने, जो भी उत्तर दिया जाएगा वो अहंकार को ही पोषित करेगा। जितना संघर्ष करेंगे अहंकार के साथ उतना ही अहंकार प्रबल होता जाता है। जितना सोचे कि निरंकारी बने, जो मार्ग ढूंढोगे उससे ही अहंकार पोषित होता है। ये जो संघर्ष है अहंकार के साथ, इसको ही ड्रॉप कर दो तो फिर वो हमको उठा लेगा। इसमें डूबेंगे नहीं, हाँ डर है डूब जाने का, अस्तित्व खत्म हो जाने का, व्यक्तित्व समाप्त हो जाने का, इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाने का, परंतु नहीं खो जाएगी। मनुष्य की कहावत है, भगवान प्रस्तापित करता है, मनुष्य समाप्त करता है, मैन गॉड प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसा कहावत है, परंतु ऐसी कहावत नहीं है वास्तव में। कहावत है कि मनुष्य प्रस्तापित करता है, भगवान समाप्त करता है, ऐसा संसार के लोग कहते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, परंतु ऐसा नहीं है। गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, ये होनी चाहिए कहावत, उल्टा। संगम युग पर हम ही अपने अहंकार से उसे समाप्त कर देते। इसके लिए ये जो बातें हम कह रहे हैं, ये थोड़ी सूक्ष्म सिद्धांत है कि ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को ही रोक देना। जैसे साइकिल कोई चला रहा है और पैडल चलाना ही बंद कर दे तो क्या होगा, गिर जाएगा वो, साइकिल गिर जाएगी। वैसे ही जो अहंकार की साइकिल है वो हम जो चला रहे हैं और जो पैडल उसको कर रहे हैं, वो जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है चलाने से। ये जो संघर्ष है अहंकार के साथ, जैसे ही हम ड्रॉप करते हैं इस संघर्ष को, अपने आप वो गिर जाती है, वैसे ही अहंकार गिरेगा। इसके लिए निरंकारी बनने की जो विधि है, आंतरिक जो संघर्ष है उसको स्टॉप करना। किस कैसे स्टॉप करना, हम व्यक्तियों से झगड़ रहे, परिस्थितियों से झगड़ रहे, ये सारे आउटसाइड हो रहा है बाहर। आत्मकेंद्रित हो जाना, जिसको बाबा एक शब्द में कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति, परंतु ये बहुत ऊंची अवस्था है। परंतु हम इस स्थिति में स्थित न होकर संघर्षरत है बाहर से, इधर उधर 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 चिंतन में है, सब चिंतन ये समाप्त हो जाए, केवल आत्मकेंद्रित हो जाए। हमको लगता है कि इसमें हमें उस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा, परंतु ये आत्मकेंद्रित स्थिति अर्थात ये जो पैडल है इसको रोक देना, अहंकार गिरता है, जहां अहंकार गिरता है वो निरंकारिता की अवस्था, और फिर वो चुनाव हमारे लिए करता है। देन ही प्रपोजेस फॉर अस, और उसका जो चुनाव होगा वो राइट होगा। हमारा जो भी चुनाव होगा वो धोखा देने वाला चुनाव होगा। इसलिए नवीनता विचारों में, सोच में, प्लानिंग में, कल्पना में, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, एक मेथड है क्रिएटिव थिंकिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इफ यू वांट गुड आइडियाज यू शुड हैव लॉट ऑफ आइडियाज। एक आइडिया से नहीं होगा, अगर एक समस्या मेरे मन में है, ऐसा ऐसा है, घर में ये समस्या है कि जॉब में ये समस्या है। अगर उस आइडिया को ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाए, 10 लोग बैठे जाए और उस एक समस्या को बीच में रखा जाए, सब अपनी अपनी आइडियाज देंगे और उसमें से फिर एक नई आइडिया निकलेगी। इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए क्या चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग। पर हो सकता है कभी बहुत सारे लोग न मिले उस तरह के, पर यहां हम जो करते हैं इसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। ये कोई क्लास नहीं है, ये मोर ऑफ डिस्कशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग है। क्या कहा? परंतु माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, नई बातें पता चलेगी हमको अपने ही समझ। हम सोचते हैं ये मेरी जो प्रॉब्लम है बहुत यूनिक है, शायद किसी की नहीं होगी ऐसी प्रॉब्लम। मेरी जो कमी है, मेरी जो कमजोरी है, शायद ही किसी की होगी ऐसी कमजोरी, दुनिया में शायद ही किसी के पास होगी। मेरे घर में ये जो समस्या है ना, यूनिक समस्या है। यू आर रॉन्ग, नो वन इज एक्सेप्शन। सभी समस्याएं सार्वजनिक समस्याएं हैं, कोई अपवाद नहीं है। और उसका हल ऐसे के मुख से निकल जाएगा जिसका इससे कोई संबंध भी नहीं है, जिसके लिए अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर्स, विजिटर्स, छोटे बच्चे, इनसे बहुत सारी नई नई बातें हमको पता चल जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक होता है, एक समस्या रखना, ये ना कहे कि ये मेरी समस्या है, ये है, इसमें क्या किया जाए, और 10 लोग मिलके उसके ऊपर सोचे तो उस समस्या का हल कहीं ना कहीं निकल जाता है। मोर द आइडियाज द मोर, जितनी ज्यादा आइडियाज है उतनी ज्यादा अच्छा, नई आइडियाज चाहिए। तो विचारों में नवीनता लाना है, थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। दूसरी मेथड है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दो ब्रेन है। अगर लेफ्ट साइड है जो लॉजिकल है, राइट जो है वो क्रिएटिव है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। इसको कैसे यूज करना? इमेजिनेशन, पिक्चर निकाला, माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं, ड्राइंग करना, माइंड मैप करना प्रॉब्लम, उसमें शब्द कम से कम हो। जैसे ये प्रॉब्लम है यहाँ, जैसे किसी को इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हर बात में सोचता है मैं बहुत छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मुझे नहीं आता है, मैं हीनता का भाव है। कोई भी कला बाकी लोगों में ज्यादा अच्छी है, मेरे में वो अच्छी नहीं है, उसके कारण ड्राइंग से सब कुछ करना, ड्राइंग बनाना, ड्राइंग, ये ड्राइंग जो होता है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। ड्रॉ करना अपनी समस्या को, एक पेपर लेना, अपनी सारी समस्या को ड्रॉ करना। जरूरी नहीं है कि हर एक को ड्राइंग आनी चाहिए, ड्राइंग नहीं आने वालों को करना है ये काम। दोज हु डू नॉट नो ड्राइंग, जो पेंटर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, वो ड्रॉ करे और अपने तरीके से ड्रॉ करे। एक पेपर पे अपनी समस्या लिख देना, लिख के रख देना अमृत वेला, और उसके बाद में उसको बाद में देखते रहना, तो कुछ तो नया क्लिक होगा कि ये किया जा सकता है। वो पिक्चर से ही पता चलेगा, ये पिक्चर है, ये नदी बह रही है, ये है, ये है, उसके पीछे अगर ये हो तो जीवन में अगर ये हो तो तुरंत कुछ ना कुछ नया क्लिक होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो वो जो भाव है हमारा, जो समस्या है, उसमें हम डूबते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं कहां जा रही है वो समस्या हमें लेके। इसके लिए नवीनता लानी है, हर चीज में नवीनता, क्रिएटिविटी, नवीनता, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूनेस एंड वैराग फॉर द ओल्ड, फिनिशिंग ओल्ड, जो ओल्ड है उसको फिनिश करना। यहां बाबा कह रहे स्पेशलिटी, हर चीज में स्पेशलिटी दो, नई नई, नया दृष्टिकोण, नई सोच, वो ही इज द नीड ऑफ द आवर। जब तक वो नहीं होगा तब तक जीवन निरस है, तब तक हम वो उन्हीं पादरियों जैसे और उन्हीं ट्रस्टी लोगों जैसे हैं जिन्होंने वो चौथा प्रस्ताव भी पारित कर रखा है। हम उसी व्यक्ति जैसे हैं जिसने वो ऊपर से देख लिया कि ये ठीक लग रहा है, थोड़ा ऊपर से चाय पी रहे, परंतु थोड़े देर के बाद फिर से उनको उल्टा होना है। तो वो हमारी गति ना हो। हम शांति करें।